हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 378। इतना बोलते हुए नैना ने आदित्य के कंधे पर हाथ रखा तो आदित्य उसकी तरफ नज़र उठाकर देखते हुए बोला, उसे हम सब की ज़रूरत है नैना, तुम्हारी भी। आदित्य काफ़ी इमोशनल होते हुए ये सब बोल रहा है और इस बात को समझते हुए नैना ने कहा, हाँ मैं हूँ उसके साथ हमेशा और मैं यहाँ से जाना भी नहीं चाहती हूँ सुनैना को छोड़कर, लेकिन हमेशा के लिए यहाँ पर रुक भी तो नहीं सकती हूँ ना, और मुझे पता है तुम मेरी सोनू का ख्याल मुझसे भी ज़्यादा अच्छे से रखोगे आदित्य, पूरा भरोसा है मुझे तुम पर। इसके अलावा अगर कभी भी मेरी मदद की कोई भी ज़रूरत हो तो तुम बेझिझक मुझे किसी भी वक्त कॉल कर सकती हो, और मेरा नंबर ना लगे तो अक्षत और विवान का नंबर भी है रवि के पास और स्वीटी के पास भी है ना। इतना बोलकर नैना ने स्वीटी की तरफ देखा तो स्वीटी ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया। इस पर आदित्य ने कहा, ओके, और बस आगे वो कुछ भी नहीं बोला। उसके बाद नैना ने थोड़ा सा गिल्टी फील करते हुए कहा, सॉरी बट मुझे अभी जाना होगा। नैना ने बस इतना कहा और उसकी तरफ से अपनी नज़रें खरीद लीं। आदित्य ने भी उसे नहीं रोका क्योंकि वो इस बात को अच्छी तरह से समझता है कि नैना की अपनी अपनी लाइफ है और वो सिर्फ सुनैना के बारे में सोचकर हमेशा के लिए यहाँ नहीं रुक सकती। नैना भी वहाँ पर और ज़्यादा देर नहीं रुकी, वो स्वीटी और अरुण से गले मिलकर वहाँ से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ ही बढ़ गई। नैना की वहाँ से चले जाने के बाद कुछ देर तक वहाँ पर एकदम खामोशी छाई रही। अरुण भी वहाँ से जाने की सोच रहा था लेकिन फिर उसने सुनैना की तरफ देखा तो पता नहीं क्यों उसका अभी वहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है। इसलिए थोड़ा सोचकर उसने आदित्य की तरफ बढ़ते हुए पूछा, मैं आज के लिए यहाँ पर ही रुक जाऊँ क्या? सुबह दी के होश में आने के बाद उनसे मिलकर चला जाऊँगा। उसने ये बात आदित्य और स्वीटी दोनों की तरफ देखते हुए कहा, हाँ ठीक है रुक जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आदित्य ने रवि की तरफ देखते हुए उसे ऑर्डर दिया, रवि गीता दी से बोलकर गेस्ट रूम की सफाई करवा दो और तुम वो सारी नई मेडिसिन ले आना जो भी डॉक्टर ने आज लिख कर दी है। आदित्य ने रवि से बस इतनी बात बोली और फिर हल्का सा झुककर उसने सुनैना को अपनी बाहों में उठाया और उसे लेकर अपने कमरे की तरफ ही बढ़ गया। उसे रूम की तरफ लेकर जाते ही आदित्य उसके चेहरे की तरफ ही देख रहा है। सुनैना अभी भी बेहोश है, उसकी आंखें बंद हैं और उसके चेहरे पर खुले बाल बिखरे हुए हैं। उसे गोद में लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए आदित्य ने अपने मन में कहा, क्यों सोना क्यों, क्यों तुम खुद को इतनी तकलीफ दे रही हो? और ये सब कुछ जिसकी वजह से हुआ है वो मैं उसे ठीक से सजा भी नहीं दे पाया, वो भी ये सब कुछ झेलना डिजर्व करता है, तुम ही क्यों? आखिर तुम्हारी क्या गलती थी इन सब में? तुमने तो उसे मना कर दिया था ना? फिर भी आई एम सॉरी, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया उस वक्त, जिसकी वजह से आज तुम्हारी ये हालात। अपने मन में ये सब बोलते हुए सुनैना की तरफ देखकर आदित्य की आंखों में आंसू आ गए और आदित्य उसे अपनी बाहों में लेकर सीढ़ियां चढ़ रहा है और वो अपने रूम तक पहुंचता उससे पहले ही ये सब सोचते हुए आंखों से निकलकर गिरने लगे, जो कि बेहोश सुनैना के चेहरे पर भी पड़ रहे हैं और उसकी वजह से उसे अपने गालों पर कुछ गीला सा महसूस हुआ और वो अब होश में भी आने लगी थी तो उसने अपने गाल पर एक हाथ रखते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली और आदित्य ने भी ठीक उसी वक्त कमरे का दरवाजा खोला और उसे गोद में उठाए हुए वो कमरे के अंदर आ गया। सुनैना की आंख खुली और उसने खुद को आदित्य की गोद में पाया तो पहले वो थोड़ा सा कन्फ्यूज हुई लेकिन फिर सब कुछ सोचकर वो हल्का सा मुस्कुराने लगी और तभी फिर से आदित्य की आंसू की एक बूंद उसके चेहरे पर पड़ी तो उसने एकदम धीमी आवाज में कहा, आदि तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ और मुझे इस तरह गोद में क्यों उठाया है तुमने? मेरे पैर में चोट लगी है क्या या फिर कहीं और? और हम कहाँ से वापस आ रहे हैं? सुनैना ने होश में आते ही उसे इतने सारे सवाल किए तो सोने से पहले ही आदित्य भी काफी कंफ्यूज हो गया और उसे समझ नहीं आया कि वो क्या करे, वो सुनैना के होश में आने पर खुश हो या फिर पहले उसके इतने सारे सवालों का जवाब दे। लेकिन उसने फिर सुनैना को आगे आकर बेड पर लिटाते हुए कहा, सब बताता हूँ मैं लेकिन पहले तुम ये बताओ मुझे कि तुम्हारे हिसाब से आज डेट क्या है? आदित्य की ये बात सुनकर सुनैना और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गई और वो बेड पर लेटी हुई थी लेकिन आदित्य बेड के साइड पर ही उसकी तरफ देखते हुए खड़ा था और उसके इस सवाल पर वो बोली, डेट? आज की डेट? भला वो कैसे याद होगी मुझे? रुको एक मिनट, देखकर बताती हूँ। इतना बोलते हुए वो इधर उधर देखने लगी। उनके कमरे में कोई भी कैलेंडर नहीं था जिसकी वजह से वो डेट नहीं देख पाई, इसलिए अपना मोबाइल या फिर आदित्य का मोबाइल फोन ढूंढने लगी तो उसे साइड टेबल पर आदित्य का मोबाइल फोन रखा हुआ नजर आया और उसे उठाकर उसने देखा और बोला, जुलाई? 15 जुलाई है आज तो, लेकिन तुम खुद नहीं देख सकते थे क्या मोबाइल में? मेरे होश में आने का वेट कर रहे थे कि मैं होश में आऊंगी तो मुझसे डेट पूछोगी तुम? वैसे भी ऐसी कोई खास डेट नहीं है आज। उसकी बात सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वो तुरंत ही सुनैना के सामने बैठा और उसे खींचकर अपने गले से लगा लिया और फिर उसने अपनी आंखों को कसकर बंद किया, जिससे उसकी आंखों में बचे हुए आंसू भी उसके गालों पर गिर गए और वो काफी ज्यादा खुश होते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हें सब कुछ याद है ना, तुम कुछ भी नहीं भूली, तुम ठीक हो गई हो ना, और अब तुम, मैं तुम्हें कुछ भी भूलने नहीं दूंगा, कभी भी नहीं। आदित्य के इस तरह गले लगाने पर सुनैना के सिर पर थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन फिर तुरंत ही उसने भी आदित्य के शरीर की गर्माहट खुद पर महसूस की और उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट ली। लेकिन उसकी बात सुनते हुए उसने बोला, क्या मतलब सब कुछ याद, मैं क्या कुछ भूल भी जाती हूँ, क्या हुआ है मुझे बताओ, क्या भूल गई थी मैं, दवाई लेना या फिर डेट। इतना बोलते हुए सुनैना ने बहुत ही कंफ्यूज चेहरा बनाया और उसी वक्त आदित्य हल्का सा उससे दूर हुआ और उसके चेहरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, नहीं कुछ भी नहीं। वैसे तुम्हें ये याद है ना, तुम्हारे सिर पर ये चोट कैसे आई? आदित्य ने जैसे कंफर्म करने के लिए पूछा तो सुनैना ने काफी गुस्से से मुंह बनाते हुए कहा, याद मत दिलाओ मुझे, उस विराज की शक्ल याद करके ही मुझे गुस्सा आता है कि कैसे उसने ये सब कुछ प्लान किया। मैं तो बस ये सोचकर ही खुश हूँ कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ था उस दिन, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। इस बारे में बात करते ही सुनैना के चेहरे पर एक अनजाना डर साफ नजर आने लगा, क्योंकि वो आदित्य से बहुत प्यार करती है और जिस तरह आदित्य उसे लेकर फिक्र कर रहा है उसी तरह उसे भी आदित्य की फिक्र रहती है। सुनैना को इस तरह देखकर आदित्य ने कहा, वैसे उसका प्लान तो मुझे ही मारने का था और उसने वो अटैक भी मुझ पर ही किया था, लेकिन तुम खुद ही बीच में आ गई थी, बिना कुछ सोचे समझे। तुमने मेरे बारे में कैसे नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीती होगी उस वक्त? और अब कभी भी ऐसा मत करना सोना, तुम्हें नहीं पता कि इस वजह से मैंने कितना सफर किया है, और अगर भले ही मुझे चोट लगती फिर भी शायद मुझे कम तकलीफ होती, लेकिन तुम्हें इस तरह से देखकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई थी।
आदित्य की बात पर सुनैना ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखते हुए कहा, कोई नेक्स्ट टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी हम ऐसी सिचुएशन नहीं आने देंगे आदि। तुम ना अपने साथ बॉडीगार्ड रखोगे हमेशा, और मुझे भी अपने साथ ही रखना, मुझे नहीं जाना कहीं भी तुम्हारे बिना अकेले। सुनैना ने किसी जिद्दी बच्चे की तरह उसकी बाह कसकर पकड़कर उसके कंधे से अपना सिर टिकाते हुए बोला। उसे इस तरह से देखकर आदित्य ने भी हल्के से उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं तो तुम्हें कभी नहीं छोड़ने वाला, हमेशा ही ऐसे पकड़कर रखूंगा, वैसे कहो तो तुम्हारे एग्जाम्स में भी मैं तुम्हारे साथ ही बैठ जाऊंगा। आदित्य ने ये बात भले ही मजाक में कही, लेकिन उसकी ये बात सुनकर सुनैना एकदम ही सीरियस होती हुई बोली, अरे हाँ, मेरे एग्जाम नेक्स्ट वीक से, मेरे एग्जाम भी है ना, और मैंने तो कुछ भी पढ़ाई नहीं की है, मेरे तो बस हॉस्पिटल के ही चक्कर लगते रहे हैं इतने दिनों में, लेकिन मुझे एग्जाम देने हैं आदित्य, तुम प्लीज़ मेरी हेल्प कर दोगे क्या? तुमने तो लास्ट ईयर ही ये सेमेस्टर क्लियर किया है ना? उसकी बात सुनकर आदित्य हंसते हुए बोला, ओह माय गॉड, सीरियसली ये क्या सुन रहा हूँ मैं? कॉलेज की टॉपर स्टूडेंट मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट की हेल्प मांग रही है, और मैं कौन सा पढ़ाई में इतना अच्छा हूँ जो तुम्हारी हेल्प कर पाऊँ? आदित्य के इस तरह हंसने पर सुनैना थोड़ी नाराजगी से उसकी तरफ देखकर बोली, सीरियसली आदित्य, ज्यादा बनो मत, मुझे पता है तुमने भी टॉप 10 में फिनिश किया है लास्ट ईयर, और तुम्हें ये बात कैसे पता, मुझ पर जासूसी करती रहती हो क्या? आदित्य ने उससे छेड़खानी करते हुए ये पूछा तो सुनैना ने भी पूरे एटीट्यूड में जवाब दिया, अपने पति के बारे में कुछ भी पता रखना जासूसी करना नहीं होता, ओके, समझे मिस्टर? इतना बोलते हुए उसने आदित्य का एक गाल खींचा तो आदित्य अपने गाल पर हाथ रखकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अच्छा तो ये मेरे गाल क्यों खींच रही हो, लगती है यार, चलो ठीक है, मैं हेल्प कर दूंगा तुम्हारी, और वैसे भी मुझे पता है पास तो तुम हो ही जाओगी, और नहीं भी हुई तो क्या, आखिर सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन हो, आदित्य ने उसकी तरफ देखकर आंख मारते हुए कहा। तो सुनैना उसकी इस बात पर तुरंत ही बोली, अच्छा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या, सिंघानिया इंडस्ट्रीज की मालकिन अगर MBA फेल हो तो क्या रेप्यूटेशन रह जाएगी मेरे अपने स्टाफ में, वहां मेरे एम्प्लॉयज और बाकी सब मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड होंगे। सुनैना ने ये बात एकदम सीरियस होकर कही तो उसकी बात पर आदित्य जोर जोर से हंसने लगा और उसे हंसते हुए देखकर सुनैना का मुंह बन गया। तो आदित्य ने ही कहा, अच्छा ठीक है, चलो अब मुंह मत बनाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बनवा कर लाता हूँ, फिर दवाई लेना, और उसके बाद अगर नींद नहीं आई तो पढ़ाई कर लेना। आदित्य ने इतनी सारी शर्तें रखते हुए कहा तो सुनैना ने कहा, नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, और दवा खाने के बाद तो जरूर नींद आती है, इसलिए पहले मैं पढ़ाई करूंगी। इतना बोलते हुए वो अपनी जगह से उठने लगी तो आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर हल्का सा खींचते हुए उसे अपनी गोद में बिठा लिया। उसके इस तरह एकदम से अपनी तरफ खींचने पर सुनैना थोड़ा सा हड़बड़ाती हुई बोली, क्या कर रहे हो तुम आदि? वो इधर उधर देख रही है क्योंकि वो चाहकर भी इस वक्त आदित्य से नजरें नहीं मिला पा रही। क्रमशः